نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور ہم سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر مسلمان بنیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کی یہ خواہش ہوگی جب بھی آپ سب ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنے دین میں بہتری پیدا کریں. اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم سب کی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو خود سے اپنے دین میں بہت ضروری خیال کرتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں. جیسے مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، حج وغیرہ، عمرے، ہم کرنے کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اور بہت ضروری ہیں بھی الحمدللہ. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اتنی زیادہ ضروری ہے مگر ہمارا ان کی طرف دھیان نہیں جاتا. اور وہ کیا ہے، آج ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دیکھا کہ عورتیں کثرت سے جہنم میں ہیں. تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے، اور لعنت بہت کرتی ہیں. یعنی لعنت کہاں سے، کس چیز کا عمل ہے؟ زبان کا. یعنی ہماری کئی جو بیماریاں ہیں، ہمارے دین میں جو کمی ہے، وہ کہاں پہ آتی ہے؟ دو جگہوں پہ. ایک ناشکری بہت ہے، ان کے ساتھ جتنی بھی بھلائی کریں، لیکن ایک دن ان کا خامن ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرتا تو فوراً کہہ دیتی ہیں مجھے تو تم سے کوئی بھلائی کبھی ملی ہی نہیں، اتنی ناشکری ہیں. یعنی کسی کی احسان کو، کسی کی بھلائی کو ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے نا وہ سارا اگلا پچھلا ختم کر دیتی ہیں. دوسری کیا چیز ہے؟ لعنت بہت بھیجتی ہیں، یعنی اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتی. تو اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کے جہنم میں جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی زبان ہے، کہ زبان کا استعمال، کیونکہ یہ خواتین کو ہمیں بولنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے، زیادہ ہم بولتے ہیں، اور جب زیادہ بولیں گے تو ظاہر ہے اس کے اندر پھر خرابیاں بھی پیدا ہوں گی. خرابیوں میں کیا خرابی ہیں؟ لعنت بھیجنا، اور غیبتیں، چغلیاں، فضول کی باتیں، بے وجہ کی بحثیں، بے وجہ کا بولنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتا ہے. ان میں پھر جھوٹ بھی آ جاتا ہے، ریاکاری، دکھاوا، شو آف بھی آ جاتی ہے. ان کے اندر بہت ساری آفات ہیں، جو تانے بھی، کسی کے عیب چننا بھی، یہ سب چیزیں زبان سے ہی ہوتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہمیں، یہ زبان ہمیں جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے، اور یہی زبان ہمیں جنت میں بھی لے جا سکتی. دیکھیں، اسی زبان سے انسان کلمہ کہتا ہے، اور اسی زبان سے انسان کفر کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ زبان ایک ایسا، ہمارے جسم کا ایک ایسا آرگن ہے جس سے، جو ہمیں جنت کے اعلیٰ درجوں میں بھی پہنچا سکتا ہے اور جہنم کے اندر بھی پہنچا سکتا ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کبھی کبھی ایک بات منہ سے بولتا ہے، اور اس ایک بات کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ جہنم میں اتنی نیچے بنا لیتا ہے کہ جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اتنی نیچے اپنے آپ کو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اس نے معمولی سمجھ کے وہ بات کہی ہوتی ہے، لیکن وہ جس چیز کو معمولی سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بری لگتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ اتنی نیچے چلا جاتا ہے. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کووں کو، کہ کوے ہیں بہت سارے، اور ان میں بہت تھوڑے سے کوے ہیں جو ریڈ بیکس والے ہیں، ریڈ ٹیلز والے ہیں، لال چونچوں والے اور بدم والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے یہ تھوڑے سے کوے ہیں نا، اتنے سارے، ہم دیکھتے ہیں زیادہ کووں کا رنگ کیا ہوتا ہے، سیاہ کالا ہوتا ہے، جیسے یہ تھوڑے کوے ہیں اتنوں کے مقابلے میں، اسی طرح عورتیں اتنی کم ہوں گی جنت میں مردوں کے مقابلے. یعنی عورتیں کم جائیں گی. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عورتوں سے دشمنی ہے, نہیں ایسی بات نہیں, بلکہ کیا وجہ ہے کہ عورتوں کا عمل ایسا ہے اور عورتیں ایسے برائی کے کام کرتی ہیں, عورتیں ایسے گناہ کرتی ہیں جو مرد کم کرتے ہیں مگر عورتوں میں وہ زیادہ ہے, اور وہ سارے کے سارے زبان سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس لیے آج ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ اتنی چھوٹی سی ہے, اور اس تھوڑی سی زندگی کو اگر آپ قدر جان لیں تو آپ کیا کریں گے, اپنے وقت کو بہترین کاموں میں گزارنے کی کوشش کریں گے, نہ کہ فضول باتیں کر کر کے اپنا وقت ضائع کرتے رہنا. جو انسان فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کر دے گا, اور سوچو قیمتی وقت ضائع کر دے گا, تو یہ زندگی تو دوبارہ نہیں ملے گی. پھر کیا ہوگا, وہاں پہ جا کے انسان پچھتائے گا کہ میں نے کیوں اپنا اتنا وقت ضائع کر دیا. اور پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو, اس کی گارنٹی دے دو کہ میں ان کو صحیح جگہ پہ یوز کروں گا, زبان اور آپ کے پرائیویٹ پارٹ, ان کو صحیح جگہ پہ استعمال کروں گا, حلال میں استعمال کروں گا, تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اگر ان کو صحیح جگہ استعمال کی. کیونکہ جب آپ ان کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں تو یہی چیز ہے جو جنت سے محروم کر دے گی. جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ جو زبان ہے نا اس کے آگے سارے آپ کا جسم جو ہے اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ خدا کی بندی تو سیدھی رہنا تو ہم سیدھے رہیں گے, اگر تو غلط ہو گئی تو ہم سب کو جہنم میں لے جائے گی, پورے جسم کو لے جاتی ہے نا, یہ اتنی سی چیز ہے. تو ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ اپنی زبان سے. کانوں کو کیسے انصاف دلانا ہے, ہم ان سے بڑی بے انصافی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. یہ دو ہیں اور یہ ایک ہے, یہ چلتی زیادہ ہے, یہ استعمال زیادہ ہوتی ہے, یہ کم استعمال ہوتے ہیں, ہم سنتے کم ہیں نا, ان کو بھی تو استعمال, ان کو انصاف دلاؤ نا, ان کے ساتھ تو ظلم ہو گیا, وہ دو ہیں بےچارے, وہ کم استعمال ہو رہے ہیں اور یہ ایک ہے, یہ ہر وقت چلتی رہتی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبان کا جو صحیح استعمال ہے وہ ہمیں کتنے سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے, اور سب سے زیادہ لوگ اسی کی وجہ سے جہنم واصل ہوں گے. آپ دیکھیں, اسی لیے اب ہم اپنے دیکھیں, اگر اپنے اسلاف کو, صحابہ کرام کو, تابعین کو, کہ وہ کتنا اس کا سوچ سمجھ کے استعمال کرتے تھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ خیر کی بات بولے, نہیں تو خاموش رہے, چپ رہو. اگر تمہیں کوئی اچھی بات نہیں آتی, کوئی خیر کی بات نہیں آتی تو خاموش رہو, ضروری تھوڑی کہ ہم نے اس کو چلاتے رہے. آپ دیکھیں کہ ایک بزرگ تھے ربیع بن حسیم, بہت کم کلام کیا کرتے تھے, بہت کم بولا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کی بیٹی ان کے پاس آئی, کہنے لگی ابا جان کیا میں کھیلنے کے لیے چلی جاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹی جاؤ لیکن اچھی بات منہ سے بولنا. دیکھیں کتنی اچھی بات اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں. جو لوگ خود اس کی ایگزامپل بنیں گے بچوں کو بھی یہی کہیں گے نا کہ بات منہ سے اچھی ہی نکالنا, اگر اچھی بات نہ ہو تو مت بولنا. تو اس لیے اگر ہم دیکھیں جس انسان نے اپنی زبان روک لی نا, اس نے اپنی بھی پردہ پوشی کر لی, کیونکہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے اپنے ہی پردے کھلتے ہیں, کچھ نہ کچھ بولیں گے, کچھ نہ کچھ اپنے بھی پردہ فاش ہوگا. کہتے ہیں نا کہ ہم بولیں گے تو اپنا آپ ہی ننگا ہوگا, اپنے آپ کو ہی ننگا کرتا ہے انسان. تو اگر انسان اس زبان کو کم استعمال کرے تو اپنا بھی پردہ رکھے گا. اسی طرح لقمان حکیم جو تھے, لقمان حکیم کے بارے میں جانتے ہیں سب لوگ, کتنی ان کے پاس وزڈم تھی, کتنی ان کے پاس حکمت تھی, عقل مند کتنے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ حکمت کہاں سے ملی ہے؟ تو لقمان حکیم فرمانے لگے کہ مجھے ایک نمبر ون سوال میں بہت کم سے کم کرتا ہوں, اور نمبر ٹو بہت کم بولتا ہوں, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت دی. جب انسان ہر وقت بولتا رہے گا تو اس کو حکمت کہاں سے آئے گی, کہاں سے عقل کرے گا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جتنا ہے, یہ بھی ایک بیوقوفی کی علامت ہے کہ انسان بولتا چلا جائے اور بولتا چلا جائے اور کبھی رکے نہیں. لیکن ہمیں اتنا زیادہ بولنے کا شوق ہوتا ہے, آپ کبھی اگر فون پہ بات کریں, آپ چونکہ ظاہر ہے کسی کے گھر جا کے بات کرنا تو مشکل ہے, زیادہ ہمارے فون استعمال ہوتے ہیں, ٹیکسٹ استعمال ہوتے ہیں, یہ तो आप उसके बाद देखा करें कि आपने कितनी लंबी फोन कॉल की है। देखिए तो सही ना, और अपने आप को जांच करें कि मैं कितना बोलती हूँ ना। और अगर आप अपने वक्त की कदर कर लें कि ये जिंदगी एक दफा मिली है, बार बार नहीं मिलनी, बार बार मैं कोई इस दुनिया में नहीं आने वाली, तो इंसान को फिर अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? क्या फोनों पे? हम अल्लाह ताला को क्या हिसाब देंगे जाके कि हम दुनिया से क्या करके आए हैं, क्या लेकर आए हैं? सिर्फ बातें, और बातों में ज्यादा बातें। अगर आप देखेंगे, अगर आप पूरा दिन की अपनी बातें रिकॉर्ड करें और ये देखें कि आपने क्या क्या बातें की हैं, तो आप देखेंगे कि उनमें ज्यादा बेफायदा गुफ्तगू, बेफायदा, जो अगर आप ना भी करते तो अच्छा था, और इनमें कितनी गुनाह की बातें। तो बेवजह बोलने से इंसान ने कितने गुनाह कमा लिए। अगर चाहे तो उसी की जगह जिक्र कर सकता था, उसी की जगह अपने लिए नेकियां कमा सकता था। लेकिन देखो, इंसान अपने लिए कितने गुनाह कमा लेता। जब अल्लाह ताला ने इस जुबान को बनाया तो अल्लाह ताला ने इसके लिए दो लॉक दे दिए। ये लॉक है इसके कि इसको लॉक कर लो, बंद। देखिए ना, जबड़े दो दिए आपको, जुबान एक है कि इसको बंद कर लो। जब नाहक कुछ बोलने लगे इसको बंद कर लिया करो, लेकिन फिर भी देखो ये बंद नहीं होती, चलती चली जाती है और रुकती नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी जो आफात है उनके अंदर ये है कि जब हम इनसे गुनाह की बातें करते हैं, क्योंकि गुनाह के इससे ऐसे ऐसे काम होते हैं कि जिसको एक इनमें से गुनाह, जैसे हम ले लें मसलन गीबत। गीबत क्या चीज़ है? कि किसी के हम पीठ पीछे उसकी ऐसी बुराई करें कि अगर वो सामने हो तो उसको बुरा लगेगा। इस चीज़ में हमें सबको अपने आप को चेक करते रहना। मैं अपने आप को भी करती हूँ, हम सबको अपने आप को देखना, किसी का नहीं सोचें कि वो देखो वो कितना करती है, वो कितना। मैं अपने आप को देखूँ कि देखो अगर गइबत करते हैं हम किसी की भी, तो ये कैसे है? इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ऐसे है कि जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। क्या कोई चाहेगा कि कच्चा गोश्त खाएं? कोई भी नहीं चाहेगा। और अपना भाई सोचे और वो मुर्दा पड़ा हुआ है और उसका गोश्त नोच नोच के खाएं। एक मैंने इस तरह का, उन्होंने ना इसको दिखाया उसके ऊपर, उन्होंने एक यानी एक बनाई, मूवी बनाई, एक छोटा सा क्लिप बनाया उसके ऊपर, इंटरनेट पे रखा हुआ था, जिसमें उन्होंने क्या दिखाया कि कुछ ऐसे औरतें बैठी हुई हैं, तो वो बातें कर रही हैं, तो बातें कर रही हैं, बहुत हंस रही हैं, और वो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने किसी की बात शुरू की, किसी की बात करते करते वो उसकी बुराई उसकी बुराई उसकी बुराई करने लगी। फिर उन्होंने दिखाया कि असल में ये क्या है, तो उन्होंने फिर एक और दिखाया क्लिप जिसके अंदर एक आदमी की लाश पड़ी हुई है और वो हंस रही हैं और उसका गोश्त ऐसे से खा रही हैं और खून गिर रहा है और वो कर रहे हैं। इतनी घिन आ रही थी कि देखा नहीं जा रहा, तो उन्होंने कहा ये है असल में जो ये कर रहा है। सुभान अल्लाह, कि शैतान इंसान से देखो क्या काम करवाता है कि इंसान के जो औकात वो नेकी में अपने इस्तेमाल कर सकता है उनको किस अंदाज में वो गंवा रहा है। अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी इसलिए तो ना दी थी, लेकिन इंसान उस ज़िंदगी को कितने बेकार के कामों में गंवा के और फिर अल्लाह ताला के सामने खड़ा हो जाएगा। जबकि उसका ये अच्छा, अगर हम सोचें तो हम कहेंगे कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, मुर्दा भाई का गोश्त खाना तो कोई इतनी बड़ी कोई बुरी बात नहीं है, शायद आपको इतनी बुरी ना लगे। लेकिन आपको मालूम है कि जब इंसान ऐसे करता है तो क्या कर रहा होता है? वो असल में अपनी नेकियाँ दूसरे को दे रहा होता है। ये मेरी, आपने मेरी बुराई की तो क्या है, अब क्या मेरे गुनाह आपको मिल गए और आपकी नेकियां मुझे मिल गई, आपके नमाज, आपके उम्रे, आपकी तहज्जुदें, आपका रोज़ा मुझे मिल गया। क्या आपने कर दिया, उसका फ़ायदा कर दिया। इसीलिए हसन बसरी क्या फरमाते हैं, अगर किसी ने किसी की गीबत करनी है तो अपनी माँ की कर लो। क्यों, किस तरह? कि चलो अपनी कुछ नेकियां अपनी माँ को ही दे दो, है ना, क्योंकि आप उसको नेकियां दे रहे हैं ना अपनी। तो आपने कितनी मेहनत से नेकी करते हैं, कितनी मेहनत से हम नमाज़ पढ़ते हैं, कितनी मेहनत से हम कुरान पढ़ते हैं, कितनी मेहनत से हम हज उमरे के लिए कर जाते हैं, लेकिन हमने वो सारे ही बांट दिए तो क्या कर दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन एक मुफलिस आएगा। लोगों से पूछा तुम्हें पता है तुम मुफलिस किसको कहते हो? उन्होंने कहा वो जिसके पास पैसे नहीं है, माल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? वो जिसने दुनिया में कभी इससे जुल्म किया, कभी इससे ज़ियाती की, कभी उसकी गीबत की, कभी उसकी गीबत की। अब क़यामत के दिन क्या होगा? वो सारे लोग जिनके साथ उसने जुल्म किया, जिसकी उसने गीबत की, जिसकी उसने पीठ पीछे बातें की, जिसको उसने बुरा भला कहा, जिसके साथ उसने ज्यादती की, वो सारे लोग जमा हो जाएंगे और कहेंगे हमारे हक दो। अब क्या होगा, वहां पे तो कोई डॉलर नहीं है, तो अब उसको क्या देना पड़ेगा, अपनी नेकियां देनी पड़ेगी। वो गए मेरी नमाज, वो गया मेरा रोजा, वो गया मेरा सदका, वो गई मेरी जकात, सब दे दी, तो अब इसके पास क्या रह गया, ये तो कंगाल हो गया। ये है कंगाल, ये मेरी उम्मत का कंगाल है, मुफलिस है, क्योंकि इसकी नेकियां सारे लोग ले गए और अब इसके पास कुछ भी नहीं। हम अपनी फुर्सत के औकात किस तरह गुजारते हैं, हमारी हॉबीज क्या हैं? अगर हम देखें ज्यादातर हमारी हॉबीज क्या होती हैं, इधर बैठ उसकी बात, उधर बैठ उसकी बात, उधर बैठ उसकी बात, ये हमारी हॉबी है, ये हमारे मशवले हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जितनी लंबी उम्र किसी को मिलती है ना, उतना ही उसका सख्त हिसाब है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया सूरह फातिर में कि अल्लाह ताला उस दिन पूछेंगे, क्या हमने तुम्हें इतनी लंबी उम्र नहीं दी थी कि तुम कुछ नसीहत पकड़ लेते, कुछ समझ लेते? इसीलिए फरमाया जिसको 60 साल की उम्र मिल गई, 60 ईयर्स की जिसको उम्र मिल गई, उसके तो सारे एक्सक्यूजेस खत्म हो गए कि वो ये नहीं जाके कह सकता अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो समझ ही नहीं आई, मुझे तो याद ही नहीं रहा, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। जिसको 60 ईयर्स की उम्र मिल गई उसके सारे एक्सक्यूज खत्म, कि अभी तक भी इसको तौबा नहीं करनी आई, अभी तक भी इसको अल्लाह नहीं याद आया, अभी तक भी अपने आप को नहीं संवार सका, अभी भी इसने अपनी बुराइयां अपने से दूर नहीं की। और ये ना सोचें कि अगर हम अभी 60 के तो हुए नहीं तो कोई बात नहीं, इसलिए कि जो बुराई है वो पुख्ता होते होते इतनी पक्की हो जाती है कि उस वक्त जाके तो आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। और इसको बाज़ उलमा ने कहा, नहीं, जो भी उम्र आपको मैच्योरिटी की मिल जाती है, बाले हो जाते हैं, तो आप बाले हो गए तो अल्लाह के पास एक्सक्यूजेस ख़त्म हो गए, क्योंकि अब आप अकलमंद हैं, होशमंद हैं, अब सारे एक्सक्यूज ख़त्म। अब जाके अल्लाह ताला को ये नहीं कह सकते अल्लाह मुझे तो समझ ही नहीं थी, अल्लाह ताला कहेंगे आपको तो शऊर दिया, आप तो बालिग थे, आप तो मैच्योर थे, कैसे नहीं आपको समझ थी। जब हमें हर चीज़ की समझ है, इंटरनेट की समझ है, हमें हर तरह की और ये फ़ोनों की डिफरेंट उनकी समझ है, हर तरह के खाने बनाने की समझ है, हर चीज़ की समझ है हमें, तो ये इस बात की समझ क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली कि तुम अब भी अल्लाह को याद कर लेते और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ना गंवाते और कुछ नेकी करके आते मेरे पास? क्योंकि जब इंसान के पास मौत का फरिश्ता आएगा तो वो कहेगा अब तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो कि मैं थोड़ी सी नेकियां कर लूँ, क्योंकि अभी तक मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, थोड़ा सा टाइम दे दो कि मैं थोड़ी सी सदका कर लूँ, कुछ थोड़ी सी नेकी कर लूँ। वो जो मैं सोचती थी ना, प्रोग्राम बनाती थी, मैं ये नेकी करूँगी, मैं नेक हो जाऊँगी, मैं नेक हो जाऊँ, अब बस मैंने नेक हो जाना, तो वो कहेगा अब तो वक्त नहीं है, अब तो वापस नहीं जा सकते, अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी लिख दी है उससे ज़्यादा नहीं मिलने की। अब उसके हाथ जोड़ने पे, उसके रोने पे, उसके उसकी मिन्नत समाजत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या अपनी जो ये ज़िंदगी मिली है उसी के अंदर अपने आप को संवारना है, उसके अंदर अपने आप को ज़ुबान की आफतों से बचाना है। तो ये गीबत ऐसी आफत है कि अगर ये बढ़ते बढ़ते नमीमा बन जाए, चुगली बन जाए, जिसको हम चुगली कहते हैं, चुगली और गीबत में थोड़ा सा फ़र्क है। चुगली क्या है कि इंसान इसके पास जाए और आपको कहे, अब वो पता है आपकी बहू आपके बारे में ये कह रही थी और फलाँ ने आपके बारे में ये कहा है, तो अब आपके दिल में क्या हो गया, उसके ख़िलाफ़ हो गई है ना, और आपकी फलाँ आपके आपके बारे में ये कह रही थी, आपकी खाला ने आपके बारे में ये कहा, तो अब आपके क्या दिल के अंदर बुरे ख्याल आए ना उसके लिए। अब वो जो बुरे ख्याल आए उसके लिए, दो लोगों को लड़ाने के लिए, दो लोगों में नाराज़गियाँ करने के लिए, कि इसको बहू को सास के ख़िलाफ़ कर दिया, सास को बहू के ख़िलाफ़ कर दिया, देवरानी जिठानी को आपस में लड़ा दिया, नंद भावज को लड़ा दिया, जो इस तरह के काम हुए, ये है नमीमा। और जानते हैं ये कैसा गुनाह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कब्रें देखी, उनको अजाब हो रहा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें पता है इनको जो अजाब हो रहा है किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, जिसको ये बड़ा समझते ही नहीं थे, वो नहीं, एक दो ऐसे गुनाह थे जिनकी वजह से इनको ये अजाब हो रहा है जो ये बहुत छोटे समझते थे। एक गुनाह क्या था, एक जो इनमें सब था वो पेशाब के कतरों से एहतियात नहीं करता, पेशाब करता है इंसान तो उसके छींटे उड़ते हैं, उस कपड़ों पे भी पड़ गए, जिस्म पे भी पड़ गए, कोई एहतियात ही नहीं की, बेपरवाही की, उसी के साथ नमाज पढ़ ली, उसी के साथ घूमते फिरते रहे, कोई फिक्र नहीं की उसकी। एक को सिर्फ इस वजह से अजाब हो रहा है, देखिए हम इस चीज़ को कितना छोटा समझते हैं, और दूसरे को किस वजह से अजाब हो रहा है कि नमीमा करता था, ये चुगली करता था, लोगों को लड़ाता था, इधर की उधर लगाइयाँ बुझाइयाँ करता था, इधर की उसको शिकायत कर दी तुम ये बात तुम्हारे बारे में ऐसे हो रही है, उसके उसके दिल खट्टे कर दिए दूसरे की तरफ से। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे और जो हम कर चुके हैं अल्लाह ताला उसके ऊपर माफ़ करे। तो ये फरमाया कि ये इतनी बुरी चीज़ है कि इसकी वजह से कब्र में अजाब हो रहा है। तो ये ऐसा एक ऐसी, यानी इसको हम सोचते होंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हालांकि देखो, एक आदमी ने ग़ुलाम ख़रीदा तो ग़ुलाम के मालिक ने कहा इसके अंदर सारी बड़ी अच्छी बातें हैं लेकिन इसमें एक बहुत बुराई है, और वो है कि ये झूठ बोलता है और चुगलखोरी बड़ी करता है। उसने कहा कोई बात नहीं, ये तो मामूली गुनाह है, कौन सी इतनी बड़ी बात है। उसने उसको ख़रीद लिया। जब उसको घर लेकर आया, आप देखें इससे आपको पता चलेगा नमीमा क्या चीज़ होती है। वो गया उसकी बीवी के पास और उसको जाके कहने लगा तुम्हें पता है तुम्हारा ये जो शौहर है ना, ये तुम्हारे पर शौकन लाने लगा है, और ये जिसके चक्कर चल रहे हैं बाहर और ऐसे करता है और ऐसे करता है, और ये देखना आप तुम्हारे ऊपर कोई ला के रहेगा। और अब इसका इलाज ये है कि रात को इसकी दाढ़ी के कुछ बाल काट के मुझे दे देना, तो मैं उससे कुछ करूँगा, कुछ किसी के पास लेकर जाऊँगा, कुछ हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। इसकी दाढ़ी के ये बाल काट लेना, उस तरह लेके जाना और रात को ये काट लें। वो कहने लगी ठीक है। अब उसके शौहर के पास गया और उसको जाके क्या कहने लगा, तुम्हारी बीवी जो है ना, इसने तो बाहर कोई और इश्क मुआशके किए हुए हैं, इसके बाहर कोई चक्कर चल रहे हैं और ये तुम्हें ज़िबा करना चाहती है, और इसके लिए तुम देखना आज रात ना ये तुम्हारे ज़िबा करने के लिए उस तरह लेकर आएगी। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। उसने कहा हाँ देख लेना आज, तुम ऐसा करना आज ऐसे प्रिटेंड करना कि मैं सो रहा हूँ और देखना ये आएगी तुम्हें मारने के लिए। वो रात को उसने ऐसा ही किया, प्रिटेंड किया। वो औरत बेचारी वो ये समझी और वो लेकर उस तरह आ गई, और उसी वक्त उसने देखा जबकि मेरे करीब ला रही है मेरी गर्दन के पास, उसने उसी वक्त उसका हाथ पकड़ लिया और उसी उस तरह से उसको मार दिया। देखो एक बंदे की नमीमा की वजह से कितनी ख़राबी पैदा हुई कि पूरा घर खराब हो गया, ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। तो ये चीज़ें तबाही लेकर आती हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया था कि क्या शराबी, जो इंसान शराब पीता है क्या वो बड़ा गुनाह करता है, या जो ये चुगली गीबत करता है वो बड़ा गुनाह करता है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, जो शराबी है, जो जानी है, वो बड़ा गुनाहगार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, एक आदमी जिना करता है, शराब पीता है, फिर वो तौबा कर देता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेते हैं, लेकिन जो गीबत करता है अल्लाह ताला उसको उस वक्त तक माफ़ नहीं करते जब तक कि वो उस इंसान से जाके माफ़ी ना मांग ले जिसकी उसने गीबत की थी। तो सोचो ये कितना बड़ा गुनाह, ये तो डबल हो गया ना। कि हम तो शराबी को बुरा समझते हैं, हम तो जानी को बुरा समझते हैं, लेकिन देखो ये है सबसे बड़ा गुनाह। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा सूद क्या है। हम कहते हैं सूद हराम सूद हराम, सबसे बड़ा सूद क्या है, रिबा क्या है? ये कि किसी की इज्जत को अपने ऊपर हलाल समझ लो, कि मैं उसकी बेइज्जती कर दूँ, मैं उसकी कर दूँ, उसके बारे में बात कर दूँ, सबको बेइज्जत कर देना, ये हम समझते हैं कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बड़ा सूद है। इंसान पैसे के सूद से बचता है लेकिन जब वो दूसरे को बेइज्जत कर रहा होता है तो ये सबसे बड़ा सूद है जो वो खा रहा है, सबसे बड़ा हराम खा रहा है वो। तो इससे मालूम पड़ा कि ये उन गुनाहों से भी बड़ी चीज़ है जिनको इंसान अब बहुत बड़ा समझता है, कबीरा गुनाह समझता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा पे क्या फरमाया था कि मुसलमान की जान माल इज्जत ये क्या है, हराम है, ना उसकी जान को नुकसान कर सकते, ना उसके माल को, ना उसकी इज्जत को, ये हराम है। और ये इस काबे से भी ज़्यादा हुरमत वाली है। काबे को हम कितनी इज्जत देते हैं बताएं, हम उसकी तरफ पैर भी नहीं करना चाहते, कितनी इज्जत देते हैं ना काबे को। लेकिन फरमाया जो मुसलमान की इज्जत है ना वो काबे से भी ज़्यादा है, ये मुसलमान है, लेकिन हमारे नज़दीक उसकी इज्जत कुछ भी नहीं, हम उसको कोई बड़ी चीज़ नहीं समझते, इसलिए हम उनको जलील करते हैं। हालांकि सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह की क्रिएशन है, और बेस्ट क्रिएशन क्या है उसकी, इंसान। जब आप किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो किसको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उनके उम्मती हैं, और फिर अल्लाह ताला को, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी। तो इससे हमें मालूम होता है कि ये ऐसे गुनाह हैं जो इंसान की नमाज, रोज़ा, ये इनको भी चाट लेंगे, क्योंकि ये दूसरों को देने पड़ेंगे। एक औरत का जिक्र हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, सहाबा कराम ने कहा एक औरत है, वो अब वैसे बड़ी नमाज, रोज़ा, तहज्जुद करती है, लेकिन अपने हमसाए को बड़ी तकलीफ़ देती है। अब हमसाए से आप सोच लें, हमसाया कह लें, घर में कोई फैमिली मेम्बर कह लें, वो भी आपके हमसाए हैं, या और किसी मुसलमान को कह लें, उसको बड़ी अजियत देती है, बहुत तकलीफ़ देती है। और दूसरी एक औरत है, वो बहुत तहज्जुद गुजार नहीं है, बहुत सदका खैरात वाली नहीं, फ़र्ज़ सिर्फ अपनी नमाज पढ़ती है, फ़र्ज़ रोज़े रखती है, लेकिन अपने किसी को तकलीफ़ नहीं देती, ना किसी हमसाए को, किसी को तकलीफ़ नहीं देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो तहज्जुद गुजार है, वो जो बहुत रोज़े रखती है, सदका खैरात करती है, लेकिन हमसाए को अजियत देती, वो जहन्नुमी है। क्यों? और वो जो औरत किसी को तकलीफ़ नहीं देती, सिर्फ अपने फ़राइज़ अदा करती, वो जन्नती है। क्यों ये कहा? इसलिए कि जो अजियत देती है किसी को, उसने तो अपनी सारी तहज्जुदें किसी को दे दी, उसकी तहज्जुद का कोई फ़ायदा नहीं, उसकी नमाज रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं, अगर उसका नमाज रोज़ा उसको इस चीज़ से नहीं बाज रख रहा, इस चीज़ से नहीं रोक रहा। तो शैतान इंसान के ऊपर बार बार आता है, बार बार उसको उकसाता है, लेकिन हमें अलर्ट रहना है, जो ही हमसे कोई ऐसी बात हो, उसी वक्त हम कॉन्शियस हो जाएं कि नहीं, हमें ये बात नहीं करनी, क्योंकि हमारा अल्लाह इससे नाराज़ होता है। तो हम अगर देखें, आप हज़रत आयशा ने एक दफ़ा फरमाया था हज़रत सफ़िया के बारे में, फरमाया था कि वो जो छोटे कद की है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़िया तुमने ऐसी बात की, अगर समंदर में डाल दी जाए पूरा समंदर कड़वा हो जाए, तुमने इतनी गंदी बात की, इतनी बुरी बात की। तो ये सोच लें कि हम कितनी सारी बातें ऐसे कर देते हैं कि जो इस ज़ुमरे में आती हैं, जो इससे भी कहीं बढ़ के आई, ये तो एक छोटी सी बात जिसको हम कहेंगे आज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे समंदर कड़वे हो जाए, तो हम तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, कितनी बड़ी किसी के बारे में। और अगर वो बात, सहाबाए कराम ने पूछा कि अगर वो बात सच्ची है, ये बात उसके अंदर है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही तो गीबत है। अगर वो बात उसमें नहीं है और तुमने झूठ ऐसे ही कह दी, पता है मैं उसके घर पे गई थी, उसने तो मुझे ये कहा और उसने तो ऐसे हुआ, वो झूठ है वो बात, और तुमने यूं ही अपनी तरफ से बना ली, जो हम बना लेते हैं अक्सर, जब बात बताते बताते, अब वो अगर 10 बातें बताई हैं, उनमें से 2 तो सच्ची थी, बाकी 8 झूठी थी, बाकी 8 हमने अपने दिमाग से ही बना ली, तो वो बोहतान है। बोहतान, बोहतान पर मालूम है गुनाह कबीरा, तोहमत, तोहमत लगाना है किसी के ऊपर, झूठा इल्ज़ाम, ये तो उससे भी बड़ा गुनाह बन गया। तो जब हम गीबत करने लगते हैं तो उसमें थोड़ी बात सच्ची होती है, लेकिन आधी हमने जो खुद से बनाई होती है वो सारी बोहतान बन गई, और हम उन 7 कबीरा गुनाह 7 हैं, जो सबसे बड़े गुनाह हैं, जिनमें शिर्क भी आता है, उनमें एक है किसी औरत के ऊपर तोहमत लगाना, बोहतान बांधना। तो अगर हम देखें तो ये ऐसे गुनाह हैं जिनकी फिर आखरत के अंदर वो इंसान ही माफ़ करेगा तो फिर माफ़ी हो सकेगी, वरना हमें अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी, और वहाँ पे कौन किसी को माफ़ करेगा? कोई भी नहीं माफ़ करेगा, कोई किसी को माफ़ करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि हर एक को नेकी चाहिए होगी, वो कहेगा मुझे अपनी नेकियां दे दो। तो हम ये देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो और ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, तुम मुसलमानों की गीबत ना किया करो और इनके ऐब ना तलाश किया करो, कि किसी के ऐब तलाश करना, कि आप कोई हमारे घर मसलन आया या हम कहीं गए, उसके बाद हम वहाँ से निकले हैं, तो अब उनकी जो सबसे बुरी बात है बस वो हम बयान कर, कोई बुरी बात देख ली, या उनका ऐब ढूंढते रहेंगे कि अब इनके अंदर कोई गलती तो देखें, कोई बुराई तो देखें, तो फिर हम कैसे हुए? गंदी मक्खी आपने देखी है, वो कहाँ जाके बैठती है? कूड़े पे जाके बैठती है, गारबेज पे जाके बैठती है, गंदी जगहों पे बैठती है, तो फिर हम वो हो गए ना गंदी मक्खी की तरह, जिसको किसी के अंदर अगर देखा तो उसकी अच्छाई नहीं नज़र आई, उसकी बुराई नज़र आई। अगर आपको हर एक में बुराई नज़र आती, देखा तो उसके अंदर ऐसा था, देखा तो फलां ऐसी थी, देखा तो वो ऐसा था, हाँ मैंने तो देखा उसको, तो उसकी अच्छाई, अगर उसके अंदर मसलन 10 बुराइयाँ और 100 अच्छाइयाँ, तो आपको 100 अच्छाइयाँ नज़र नहीं आ रही, आप उसकी 10 बुराइयाँ नज़र आ रही हैं, इसका मतलब आपका ज़ौक गंदी मक्खी जैसा। तो हम में से कोई भी गंदी मक्खी नहीं बनना चाहता, जो कूड़े पे जाके बैठे, जो लोगों की गंदगियों पे बैठे, देखिए उसकी गंदगी है ना, हम उस पे जाके बैठ रहे हैं, अच्छाई पे नहीं बैठ रहे। تو فرمایا کہ ان کے عیب نہ تلاش کیا کرو، کیونکہ جس کے عیوب کا اللہ پیچھا کرے گا، اگر اللہ نے تمہارے عیبوں کا پیچھا کرنا شروع کر دی نا، تمہیں تو دوسروں کی برائیاں بہت نظر آتی ہیں نا، اور اگر اللہ تمہاری برائی کے پیچھے پڑ گیا تو تمہیں تمہارے گھر میں رسوا کر دے گا۔ سمجھ آئی بات؟ پھر تم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے بے عزت ہو جاؤ گے۔ تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ، ہمیں تو کسی کے کتنے عیب پتا ہوتے ہیں بتائیں، 10 باتیں پتا ہوں گی، 20 ہوں گی، 30 ہوں گی، کتنی پتا ہوں گی؟ ہم کسی کے ساتھ 24 گھنٹے رہ کے بھی اس کے عیب نہیں جان سکتے، سارے نہیں جان سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے سارے عیب معلوم ہیں کہ نہیں ہیں، اندر باہر سب طرح کے ہمارے عیب اللہ کو پتا ہے۔ ہمیں کسی کے 10 باتیں پتا ہیں، ہم ان کو اچھال رہے ہیں، اللہ کو ہماری ساری باتیں پتا ہیں۔ اگر وہ اچھالنے پہ آئے تو کیا ہو، ہم کتنے بے عزت ہو جائیں، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ وہ تو ہماری اندر کی، باہر کی، دن کی، رات کی، ہر چیز کی، ہمارے اکیلے کی، ہمارے سب کے سامنے کی، ہر بات کو جانتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر کیا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر وہ ہمیں بے عزت کرے تو بتاؤ ہم کدھر منہ چھپائیں گے؟ ہم تو دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہیں، دو باتیں بھی اس کی پتہ چل جائیں تو، ایک بات بھی پتہ چل جائے تو ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں، جب تک اس کا پورا اشتہار نہ دے دو۔ تو سوچیں اگر اللہ اچھال لے پھر کدھر منہ چھپاؤ گے؟ تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ میرے ایوب کے پیچھے پڑ گیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ تو اس لیے انسان کسی کے عیب کو نہ ٹٹولے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ، ویل ہے، ویل کس کو کہتے ہیں؟ ویل لی، ویل کیا؟ ہلاکت، اور ویل ہے جہنم کی ایک وادی جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتے ہیں۔ وہ کس کے لیے؟ ہمزہ اور لمزہ جو کریں۔ ہمزہ کس کو کہتے ہیں اور لمزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو عیب ٹٹولے کسی کے، کہ ہر وقت لوگوں کے برائیوں کے پیچھے پڑا رہے کہ میں کچھ نہ کچھ اس کے اندر نقص ہی نکالوں، ہر وقت اس کو دوسروں کی برائی بس دیکھنے کا شوق ہے اور اس کی غیبت کرنے کا، ایسے انسان کے لیے وائل ہے۔ اور پھر یہ بھی اس کا معنی کیا گیا کہ جو لوگوں کے سامنے ان کو بے عزت کرے اور جو ان کی غیبتیں بھی کرے، ان کے پیٹھ پیچھے بھی ان کو بے عزت کرے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم تو کسی کی غیبت کیا کریں گے، میں اس کے منہ پہ بھی کر سکتی ہوں، دیکھنا میں اس کو سب کے سامنے بے عزت کروں۔ ہائے ہائے، سب کے سامنے بے عزت کرو گے تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ وہ تو اور بھی بری بات ہو گئی۔ پیٹھ پیچھے کرنا وہ بھی برا ہے، اور جو سب اس کے سامنے کرنا ہے وہ بھی برا ہے۔ کیا آپ اس کو رسوا کرنا چاہتے ہو؟ سب میں اس کا عیب اچھالنا چاہتے ہو؟ سب میں اس کی بے عزتی کرنا چاہتے ہو؟ تو دونوں چیزیں بری ہیں، دونوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ایسے لوگ اس وادی میں ہوں گے جہنم کی، جہنم میں ساری جگہ ایک جیسی نہیں ہے، اس وادی میں ہوں گے جہاں پہ یہ پیپ اور خون جو جہنمیوں کا وہ پلایا جائے۔ تو سوچو کہ ان کا انجام کتنا برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ تو آپ دیکھیں، اگر ہم اس کا دیکھیں کہ اس کا ہم علاج کیا کریں، تو ہم تھوڑی سی اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کیا کریں۔ پہلے تو یہ بات کہ ہم جس کے ساتھ ہم کر چکے اس سے معافی مانگ لیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ اگر ہم جا کے کسی کو کہیں گے جی میں نے آپ کی یہ برائی کی ہے، یہ کہا ہے آپ کے بارے میں، ایسا ایسا کہا ہے، فلاں کو کہا ہے، فلاں کو کہا ہے، تو وہ تو اور بھی زیادہ غصے میں آ جائے گا، اور زیادہ ناراض ہوگا، وہ اور زیادہ آپ سے نفرت کرے گا، اور آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ جو ہمیں بتایا وہ کیا بتایا؟ کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے بھلائی کی، خیر کی دعا کریں جس کی بھی ہم نے غیبت کی ہے۔ اب کیا ہوگا، شیطان جب دیکھے گا کہ آپ تو اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، تو وہ آپ کے دل میں کبھی اس کے خلاف باتیں نہیں ڈالے گا، کیونکہ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جب ہمارے دل میں دوسروں کے لیے بدگمانی آتی ہے، جب ہمارے دل کے اندر دوسروں کے لیے برے خیالات آتے ہیں، تبھی بات شروع ہوتی ہے نا، پھر ہم غیبت کرنے لگتے ہیں۔ تو دوسرے کے بارے میں برے خیالات آنے ہی نہ دیں۔ دیکھیں، ایک صحابی تھے نا، وہ انٹر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو وہ آ رہا ہے۔ تو دیکھا ایک آدمی تھا، ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں اپنے جوتے اٹھائے ہوئے تھے، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ فرمایا تم نے جنتی دیکھنا ہے نا، وہ آ رہا ہے۔ دوسرے دن کیا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پھر سے یہی بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جس نے جنتی دیکھنا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے، اور دیکھا وہی صحابی ہیں۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا،
صحابہ کرام کو بہت حیرانگی ہوئی کہ کیا ایسا کام یہ کرتے ہیں، ان کی نماز تو جیسے ہمارے جیسے ہی پڑھ رہے ہیں، تو کیا ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی؟ تو ایک صحابی ان کے گھر چلے گئے اور ان کے گھر میں کہا کہ میں آپ کے گھر میں مہمان بننا چاہتا ہوں، ان کے گھر میں رہے۔ دیکھا کہ رات کو ویسے ہی اتنے کوئی ایسی کوئی خاص ان کی نہیں تھی عبادت کے، کوئی پوری پوری رات عبادت کر رہے ہوں، کوئی پورا پورا دن کوئی ایسی عبادت میں گزار رہے ہوں۔ ہم نے کہا کس بات سے ان کو یہ بشارت ملی ہے، خوشخبری ملی؟ آخر کار جب جانے لگے تو ان سے پوچھا کیا ایسی بات ہے، آپ کیا ایسا کام کرتے ہیں؟ میں نے تو کچھ کوئی خاص اسپیشل چیز نہیں آپ کے اندر دیکھی۔ فرمانے لگے میں کوئی ایسا خاص کام تو نہیں کرتا، بس ایک بات ہے کہ میرے دل کے اندر کسی کے لیے برائی ہے نہیں۔ میں رات کو جب سونے لگتا ہوں نا تو اپنے دل سے سب کے لیے جو برائی ہے اس کو ختم کرتا ہوں، اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ اس بات کے اوپر ان کو خوشخبری اللہ نے دنیا میں دے دی جنت کی۔ دیکھو سبحان اللہ، کہ جو انسان، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے نا، کسی نے آپ کو دل کو تکلیف دی ہوئی ہے، دل دکھایا ہوا ہے، ہر رات اگر انسان اپنے سوچے کہ اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، بہت مشکل ہے، لیکن اسی کے اوپر جنت ہے۔ آپ کو بتاؤں، ایک ہماری ملنے والی بہت نیک لڑکی، تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اطلاع ملی کہ میری دوست کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو کہتی ہیں جب میں اس کے جنازے پہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو میں نے اللہ سے کہا دل ہی دل میں کہ اللہ میں نے جو بھی اس نے میرے ساتھ کیا نا، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کہتی ہیں پھر میں نے دل میں سوچا میں نے تو اس کو معاف کر دیا، لیکن میں اب اس سے معافی کیسے مانگوں، میں اس سے معافی کیسے مانگوں، میں نے تو اس کو جو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی اس کے اوپر تو اس کو تو معافی مل گئی، مجھے معافی کیسے ملے گی، کیونکہ وہ تو دنیا سے اب جا چکی۔ اس لیے انسان اس زندگی میں دوسروں سے بھی معافی مانگ لے کہ بھائی میں نے کوئی کہا سنا ہے آپ سے یا کچھ کہا ہے تو اس کے اوپر آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ اس کے اوپر ضروری نہیں کہ آپ ان کو ہر بات بتائیں میں نے یہ کہا یہ کہا، ویسے ہی کہہ دیں کہ میں نے جو آپ سے کہا سنا ہے آپ مجھے معاف کر دیں، کوئی میری طرف سے آپ کو دل کو تکلیف پہنچے تو آپ بھی معافی مانگ لیجیے، اور دوسرے اس کے حق میں دعا کیجیے، اور تیسرے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جو اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلا، جیسے جو میں نے آج آپ کو بات بتائی، کہ آپ ان باتوں کو بار بار سنتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، تاکہ انسان کے دل میں، دیکھیں اب یہ باتیں ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے بھی پتہ ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے جب ایک دفعہ دوبارہ کوئی ہمیں بتاتا ہے تو ہمارے ذہن میں دوبارہ یاد دہانی ہو جاتی ہے نا، پھر اس کے بعد پھر ہم کچھ عرصے کے لیے باز آ جاتے ہیں، مگر پھر ہم انہی گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں، بار بار ان چیزوں کو اپنے لیے ایسے جگہ پہ جائیں، ایسی ذکر سنیں، اللہ کا ذکر سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سنیں، احادیث کو سنیں، تاکہ ہمارے دل کی صفائی ہوتی رہے، پھر ہم ان گناہوں سے بچتے رہیں۔ تو اس لیے اس کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ان کی یاد دہانی کراتا رہے اپنے آپ کو۔ پھر اس کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ عیب جو میں دوسروں کے بیان کر رہی ہوں تو میرے اندر بھی تو کتنے سارے عیب ہیں، کتنے ہیں نا عیب، کوئی بھی کسی بات سے برائی سے پاک تو نہیں ہے، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی برائی ہے، ٹھیک ہے میرے اندر اگر میں کہتی ہوں کہ جو ان کے اندر برائی ہے وہی میرے اندر ہے، تو پھر میں کس چیز کی غیبت کر رہی ہوں، وہ تو چیز میرے اندر بھی ہے نا، اور اگر وہ میرے اندر نہیں ہے، ان کے اندر ہے اور میرے اندر نہیں ہے، تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ میں ان کی غیبت کروں، میں اللہ کا شکر کروں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عیب سے پاک رکھا، اور اب میں اپنے آپ کو غیبت کر کے سب سے بڑے گناہ میں تو نہ ملوث کر لوں، سب سے بڑا گناہ تو اپنے اوپر نہ لاد لوں، کیونکہ تو سب سے ہی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ اگر انسان سوچے کہ میرے اندر بھی تو کتنی برائی ہے، تو انسان پھر کسی کی غیبت کرنے سے بچ جائے گا۔ اسی طرح اگر انسان اپنے سے عہد کر لے کہ اگر میرے سے کوئی غیبت ہوتی ہے تو میں اپنے آپ کو یہ سزا دوں گی کہ میں اتنا صدقہ کروں گی، یا میں اتنے نفل پڑھوں گی، یا میں اتنے روزے رکھوں گی، تو کیا ہوگا، اب دل کو مشکل لگے گا نا، روزہ رکھنا بھی مشکل لگتا ہے، نفل پڑھنا بھی مشکل لگے گا، صدقہ کرنا مشکل، جو بھی آپ کو کام زیادہ مشکل ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے نا، تو انسان کو اپنے آپ کو یہ سزا دینی چاہیے، اب اگر میں نے غیبت کی تو اب مجھے یہ کرنا ہو، اس سے کیا ہوگا، انسان آہستہ 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 وہ کم ہی کرے گا نا، کم کرتا رہے گا اپنے لیے۔ تو اگر آپ اس طرح کی اپنے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ, اگر ایک دن میں تو انسان نہیں ختم ہو سکتا, اگر آج آپ میں بھی 10 عبادتیں کرتے ہیں تو پھر 5 پہ آ جائیں گے, پھر 4 پہ آ جائیں گے, پھر 3, آہستہ آہستہ کر کے کم ہو جائیں گے. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ ایسے اپنے آپ کو خود سے خود سزا دینے لگے. پھر اس کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب بولیں سوچ کے بولیں, بے مقصد نہ بولے جائیں, کیونکہ جب آپ بے مقصد بولتے چلے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے منہ سے نکلے گا, کوئی نہ کوئی بات منہ سے ادا ہوگی نا. جب انسان باتیں کرے گا اس کی زبان چلتی رہے گی تو کسی کی تو بات کر ہی دے گا. تو اس لیے کم بات کرو گے, جو کم بات کرنے والے ہیں وہ بڑے فائدے میں ہیں, ان کا حساب کتاب کم ہے. کیونکہ ہماری ہر بات کا, یہ جو ہماری زندگی ہے نا, اس پوری زندگی کا حساب ہے, اس میں سے ہر ہر بات کا اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لیں گے. اور جب حساب کا ہمیں ہماری باتوں کا وہ بیگ کھولا جائے گا جس میں ساری باتیں ہیں, تو بتاؤ کہ ان میں سے کتنی ساری غیبتیں نکل آئیں, کتنے سارے جھوٹ نکل آئیں. تو اس لیے اگر انسان دیکھے تو کم بولو گے کم حساب کتاب, زیادہ بولو گے زیادہ حساب کتاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا شہید بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اپنی زبان سے نکلے ہوئے کلام کا حساب نہ دے دے. تو جب شہید کو بھی دینا پڑے گا تو مجھے آپ کو نہیں دینا پڑے, ہم سب کو ہماری جو زبان سے نکلتا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. کیونکہ جتنی ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک فرشتہ جو لکھتا جاتا ہے, لکھتا جاتا ہے حاضر بات باس فرشتہ جو ہر بات لکھتا ہے, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, یہ ہے کرامن کاتبین, یہ لکھتے جاتے ہیں اور یہ ہر ہر بات اتنے الرٹ ہیں کہ نہ وہ سوتے ہیں نہ وہ بریک لیتے ہیں نہ وہ تھکتے ہیں, وہ ہر ہماری بات کو, آپ دیکھیں جتنی باتیں میں بول رہی ہوں, ہو سکتا ہے اگر آپ لکھنے لگیں کتنی لکھ سکیں گے, نہیں لکھ سکتے نا. لیکن یہ فرشتے ایسے ہیں جو اوف بھی نکلا ہے نا منہ سے, اوف اللہ بھی نکلا ہے, وہ بھی نوٹ کر لیں ایچ اینڈ ایوری ورڈ. تو آپ بتاؤ کہ پھر ان سے کیسے بچ سکتے ہیں, اور اس دن ہمارے اعمال کو کھولا جائے گا اور دکھایا جائے گا سب کے سامنے, اور انسان کو خود کہا جائے گا کہ آج اپنی کتاب کو تم خود پڑھو, آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس دن انسان کو کہا جائے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی پڑھو. ہم پڑھ سکیں گے کہ ہم نے یہ کہا ہے؟ آج تو ہم شرماتے ہیں, کسی کو نہ پتہ چل جائے کہ ہمارے یہ عمل ہے, کل کیا دکھا سکیں گے یہ عمل کہ ساری دنیا ہوگی موجود. آج تو 3-4 لوگوں سے ہم شرماتے ہیں نا, تو وہاں پہ تو پوری خلقت ہوگی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک. اور جیسے آپ کے بڑے بڑے پروجیکٹر ہوتے ہیں اس طرح ان کے اوپر دکھائے جائیں گے, یہ دیکھو اس کے کام, وہ جو ہم نے چھپا چھپا کے بھی کیے ہوئے وہ بھی سارے سب کو نظر آئیں گے. تو اس دن کیسے چھپاؤ گے, اس دن کدھر چھپو گے؟ تب انسان کہے گا عین المفر, کہاں ہے بھاگنے کی جگہ, کدھر جاؤں گا؟ کوئی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی, کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی, کوئی بچنے کی جگہ نہیں. پھر اس کلام کو آج تو ہم چھپا سکتے ہیں, آج تو کسی کے پیٹھ پیچھے ہم بات کر سکتے ہیں, آج کسی کی برائیاں کر سکتے ہیں, آج کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا, لیکن کل کیا کریں گے؟ کتنوں سے چھپاؤ گے؟ کیا ہر ایک کو نہیں معلوم ہوگا؟ ہماری جو کتاب ہے اگر یہ خوبصورت لکھی ہوگی, اس میں اچھی اچھی باتیں ہوں گی, اچھی اچھی چیزیں ہوں گی, اچھے اچھے عمل ہوں گے, کتنا اچھا لگتا ہے جس کے مارکس فل آتے ہیں اس کو, کتنا دل چاہتا ہے سارے میرے نمبر دیکھیں, یہ دیکھو میرا رزلٹ دیکھو, یہ دیکھو میرا رزلٹ دیکھو. اور اگر کوئی بچہ فیل ہوا ہو یا جس کے ڈی گریڈ آیا ہو سی گریڈ آیا ہو, وہ کہتا ہے کہ میں چھپا کے رکھوں, میرا رپورٹ کارڈ میرے ماں باپ بھی نہ دیکھیں. تو بتاؤ کہ اس دن ہماری کتاب کو ہمیں ہی نہیں دیکھنا ہوگا, ہر ایک کو دیکھنا ہوگا. تو آج تو ہم نے جو بات کی ہمیں تو خود ہی بھول جاتا ہے کہ ہم نے کل کیا باتیں کی تھیں. کیا خیال ہے آپ کو, کوئی یاد ہے؟ ہم نے جو غیبتیں کی ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا غیبت کی, کوئی یاد ہے کسی کو؟ اپنی باتیں بھی نہیں ہمیں یاد ہے نا. اگر آج صبح سے ابھی تک کی باتیں کہہ دیں کہ آپ بتاؤ آج آپ نے کیا کیا بات کی ہے, نہیں یاد. کل کی نہیں یاد, ایک سال پہلے کی نہیں یاد, پوری زندگی کی کہاں یاد ہوں گی؟ جب انسان کھلے گا ہائے اس میں تو ساری چھوٹی بڑی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں, کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بڑی سے بڑی بات کوئی چیز اس میں سے رہ ہی نہیں گئی. ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر ایک آنکھ اٹھی ہے نا, وہ بھی کسی کا ایپ ٹٹولنے کے لیے کہ میں ذرا دیکھوں کیا رکھا ہے یہاں پہ, क्या करती है ये घर में, जरा देखें तो सही इनके घर में क्या क्या है, कैसे इसका दिन गुजरता है। जरा इसकी टो लेने के लिए उसके घर जाएं, ये सब लिखा होगा उसके अंदर। एक नजर का उठना भी लिखा है, एक इशारा करना भी लिखा है, एक कदम उठाना भी लिखा है। किस मकसद के लिए उठा था ये, नजर क्यों उठी थी, क्या देखने के लिए उठी थी। आप मेरे साथ बैठे, मुझे नहीं पता कि इनकी नजर उनकी तरफ ये देख रही है तो क्या सोच के देख रही, मगर अल्लाह को पता है और वो हमारी किताब में लिखा। एक एक नजर, एक एक इरादा, एक एक सोच उसके अंदर है दर्ज। क्या हमारी सोचें जब सबके सामने आएंगी, हमारे इरादे आएंगे, हमारे डायलॉग आएंगे, हमारी नजरों का उठना आएगा, वो किस किस को दिखाएंगे और किससे छुपाएंगे। चाहे हस्बैंड हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे बच्चे हों, वो भी देखेंगे हमारी माँ ये काम करती थी। सोचें ज़रा कितनी शर्मिंदगी की बात है। आज हम सबके सामने रोल मॉडल बनना चाहते हैं, अच्छे बनना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए हम बेहतरीन बनना चाहते हैं, बेस्ट माँ बनना चाहते हैं, लेकिन वो क्या देखेंगे कि ये मेरी माँ के कारनामे हैं, ये उसकी बातें हैं। तो हर इंसान चाहता है कि उसकी इज्जत हो और उसकी इज्जत की जाए, लेकिन जब हम अपने आमाल नामे ऐसे लिख रहे हैं तो हम अपनी बेइज्जती का खुद सामान तैयार कर रहे हैं। देखो हम क्या क्या अपने आमाल नामे में भर रहे हैं, हम जानते हैं या हमारा रब जानता है, किसी को भी नहीं पता। तो वो एक्सपोजर होगा उस दिन, उस दिन सबको दिखाया जाएगा। तो देखें ये ज़िंदगी तो इतनी कीमती, अगर यकीन करें इंसान अपनी ज़िंदगी की कदर जान ले ना, सारी फजूल बातें वो छोड़ दे ज़िंदगी की, चूँकि हम कदर नहीं करते ना, हमने ज़िंदगी को समझा हुआ है कि जैसे हमने हमेशा यहीं रहना है, इसीलिए हमें वक्त की भी कदर नहीं, इसलिए हम वक्त को गिबतों में गंवा रहे हैं। अगर आप देखें ज़िंदगी को, तो भी मैं उसी दिन क्लास में अपनी बता रही थी कि ज़िंदगी को देखें तो ऐसे ही है जैसे तीन घंटे का इम्तिहान होता है ना, 3 आवर्स का होता है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी है 3 दिन की, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये 3 दिन। अच्छा अब आप देखें, आपको जो 3 घंटे मिलते हैं, आप सबने इम्तिहान दिए में स्कूलों में कॉलेजों में, उन 3 घंटों में क्या होता है। अगर आपके पास 10 सवाल हैं, आप 1 घंटा अगर आप अपना ज़ाया कर दें तो क्या होता है, 2 घंटे रहेगा, 2 घंटों में आपको 10 सवाल करने। अगर आप 2 घंटे गुजार देंगे बेकार में तो आखिरी घंटे में आपको सारे सवाल करने, 10 हैं 20 हैं 50 हैं, सब सवाल करने। आप कितनी तेज़ी से करेंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है आखिरी घंटा शुरू हो गया, अभी बेल बजने वाली है। इसी तरह अगर हमने अपना बचपन गंवा दिया, बचपन में तो हमें समझ ही नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था, ऐसा ही है ना हम सबके साथ, बचपन में कोई दीन की इतनी समझ नहीं है, कोई इतनी अकल नहीं। अगर हम अपनी जवानी भी गंवा रहे हैं, 1 घंटा तो हमारा हमने ज़ाया कर चुके हैं, हम सब ज़ाया कर चुके हैं। अगर हम अपनी जवानी में भी अल्लाह की तरफ नहीं आते, हम दीन को नहीं समझते, हम दीन के अहकामात को नहीं समझते, अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहा है इसका हमें पता ही नहीं है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है इसका भी नहीं पता, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया उसका भी नहीं पता, हमने 2रा घंटा भी गंवा दिया। अब हमारा अगर 3रा घंटा चल रहा है तो ये लास्ट घंटा है, इसमें हमने सब कुछ करना है, वो जो बचपन में करना चाहिए था, जवानी में करना चाहिए था, सब अब हमने 3रे घंटे में करना है। क्या ऐसे बंदे के पास कोई फुर्सत होगी, वो तो कहेगा मेरा तो आखिरी घंटा चल रहा है भाई, मेरे पास कहाँ टाइम है, मुझे तो सारा काम ही इस घंटे में करना है। बजाय हम लोगों पे नज़र रखें, उस वक्त हमें अपनी फिक्र करनी है कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं आगे। और जिनका 2रा घंटा चल रहा है, सारों का 1 घंटा तो गुजर चुका है, किसी के पास अब पता नहीं 3रा घंटा भी है या नहीं, हम ये भी नहीं जानते, शायद हमें 2 घंटे ही मिले हों, क्या पता हमें इस जवानी के बाद बुढ़ापा मिले ही नहीं। और जिनके पास बुढ़ापा है वो देखें कि इसके बाद आखिर आगे क्या है, आगे दोबारा जवान तो नहीं होना, आगे क्या है, आगे तो अल्लाह के पास जाना। तो जो जवान है वो अपने इस वक्त को गुजारे इस तरह से कि ज़्यादा से ज़्यादा जब अपने आप को अल्लाह की तरफ लेकर आओगे, उसके कुरान की तरफ लेकर आओगे ना, आपके पास खुद ही टाइम नहीं होगा कि आप बेकार की बातों में वक्त गुजारो, इधर उधर की बातें करो। तो क्यों ना हम अपने वक्त को ऐसे गुजारें, तो अपने वक्त को ऑर्गेनाइज़ करें, देखें कि मेरा वक्त क्यों फजूल बातों में गुजरता है, इसके लिए कि मेरे पास फारिग टाइम है। जब आपको कहा जाता है कुरान की तरफ आओ, कुरान सीखो, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, टाइम कहाँ जाता है, असल में वो टाइम सारा बेकार चीज़ों में जा रहा है, फ़ोन पे जा रहा है, टीवी पे जा रहा है, बातों में जा रहा है, इन बातों से क्या हासिल होगा, क्या हासिल होगा। इससे कुछ हासिल नहीं, इसका एंड रिजल्ट क्या है? जीरो। पूरा दिन भी बातें करते रहो, क्या इन द एंड मिला? कुछ भी नहीं, उल्टा गुनाह ही कमाए होंगे। लेकिन आप अगर कुरान की तरफ आए, हदीस की तरफ आए, कुरान को समझें, उसको सुने, खैर की बात ही, फिर वही जाहिर है बातें जब आप सुनते रहेंगे वही आपकी ज़ुबान से अदा होंगी, तो क्या होगा, आप उसी वक्त को, अपने उसी दिन को कितनी खैर में गुजार सकते हैं, कितनी अपने आखरत के घर के लिए कितना कुछ जमा कर सकते हैं। आप अपनी आखरत का घर यहाँ से बना रहे हैं, एक एक ईंट लगा रहे हैं, एक एक जो मेरा अमल है ना, जो एक एक मैं बात बोल रही हूँ, एक एक अमल कर रही हूँ, वो ईंट है, समझ लें एक ब्रिक है जो मैं अपने घर में लगा रही हूँ। यहाँ तो मैं अपने जन्नत के घर में लगा रही हूँ, जहाँ जहन्नुम के घर में लगा रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर इंसान का एक मकाम, या एक मकाम जन्नत में और एक जहन्नुम में। अगर आपका जन्नत का घर रेडी हो गया, आपने उसके लिए अमल कर लिया, आपने उसको रेडी कर लिया, तो आप जन्नत में चले जाएंगे और आपका जहन्नुम का घर किसी और को मिल जाएगा। और अगर आपने अपने जहन्नुम का घर रेडी कर लिया, वो रेडी हुआ है, वह जन्नत का घर तो आपने रेडी ही नहीं किया, उसके लिए तो कुछ भेजा ही नहीं था, तो जहन्नुम के घर में चले जाओगे, आपका जन्नत का घर किसी और को मिल जाएगा। तो हमारे दो घर बन रहे हैं, जो रेडी करोगे उसी में चले जाओगे। अगर आपने जहन्नुम में के लिए ब्रिक्स भेजती जा रही, ईंटें भेजती रही, ये जो अमल है ये क्या है, ये फरिश्ते ले जाके ईंट लखरा रहे, लगा रहे, लगा रहे, उस घर को बना रहे हैं। अगर वहाँ के लिए भेजा, वो घर तैयार कर रहे हैं आप खुद, हम अपने हाथों से कर रहे हैं। अल्लाह ने नहीं है कोई हम पे जुल्म किया कि किसी को जहन्नुम में डाल दे, वो अल्लाह ताला को शौक नहीं है, वो जुल्म करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप तैयारी जहन्नुम का घर कर रहे हो तो वो ही मिलेगा, और अगर जन्नत का कर रहे हो तो वो मिलेगा। हम अपने आप को खुद देख लें कि हम अपना कहाँ का घर तैयार कर रहे हैं। हर एक की दौड़ लगी हुई है किसी ना किसी तरफ, हम दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, जन्नत की तरफ दौड़े या जहन्नुम की तरफ दौड़े, हमारी तैयारी से पता चल रहा है। जो आज हम तैयारी कर रहे हैं ना, आप देखें किसी ने अभी पाकिस्तान जाना हो, अब उन्होंने हज पे जाना है, वो कहाँ है, उन्होंने हज पे जाना है ना, उनकी तैयारी से पता चल रहा होगा आपको कि ये हज पे जा रही है ना, उनके दिन रात से पता चल रहा होगा कि ये बड़ी तैयारी कर रही, पैकिंग हो रही है, शॉपिंग हो रही है, ये। और इंसान की तैयारी बता देती है कि वो कहीं जाने वाला है। आप मुझे बताएं, जब हम ये दुनिया में जो तैयारी कर रहे हैं, क्या ये नहीं बताएगी कि हम जन्नत की तरफ जाने वाले हैं या जहन्नुम की तरफ? अगर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अगर अपनी आखरत के लिए, अपनी जन्नत के लिए कुछ नहीं बना रहे, तो आप जहन्नुम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर जन्नत के लिए काम कर रहे हैं तो जन्नत की तैयारी कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी से पता चल जाएगा, अल्लाह ताला वही देगा जो आप अमल कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम देखें तो पहले अपने वक्त को भी ऑर्गेनाइज़ करें, फिर ये कि हम अगर शॉर्ट फ़ोन कॉल्स करें, काम की बात के लिए सिर्फ फ़ोन उठाएँ, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज़ है जिससे सारी ख़राबी पैदा होती है। सिर्फ काम की बात के लिए उठाएं, बेकार की बातों के लिए जस्ट अच्छा चलो फ़ोन करती हूँ उससे ये बात करती हूँ, लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स ना करें। जितना लंबा टाइम फ़ोन पे लगाएंगे उतनी बुराइयाँ करेंगे, जितनी देर किसी के साथ बैठ के बातें करेंगे उतनी बुराइयाँ करें। सोच के बोलें, सोच के मुँह से बात निकालें। फिर ये कि जब आपका दिल चाहे तो एक दिन सब्र कर लें, कहेंगे कल मैं करूँगी ये बात, कल तक हो सकता है आपको भूल ही जाए, या हो सकता है गुस्सा ही ठंडा हो जाए। वो गुस्सा आता है ना, एकदम उबाल आ जाता है, फिर इंसान गीबत करता है, तो हो सकता है कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, तो आप जब एक दिन इंतज़ार करेंगे, कुछ किसी और काम में लग जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो भूल ही जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे इस बुरी चीज़ से बचा ले, इस बुरी आदत से बचा ले, ज़ुबान की आफात से बचा ले, अल्लाह किसी की नमीमा से, गीबत से, झूठ से, इन सारी चीज़ों से अल्लाह ताला मुझे बचा ले, मेरी ज़ुबान को महफूज कर। तो ताकि हम सब औरतें और हम उस चीज़ से बच जाएँ जिसकी वजह से औरतों की कसरत होगी जहन्नुम, और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें वही काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे वो राज़ी होता, और हमारी ज़िंदगियों को बेहतरीन काम में गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए। क्योंकि अपनी अगर ज़िंदगी की कदर नहीं की तो वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, और क़्यामत की निशानियाँ भी हैं ना कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरेगा। तो आप देखें कि साल, महीने, महीने, हफ्ते और हफ्ते, दिन और दिन ऐसे गुजर रहे हैं वाकई जैसे कि एक जो हदीस में था वो बिल्कुल सच हो गया कि जैसे एक मोमबत्ती जलाई और बुझा दी, बस इस तरह से गुजरा, वाकई ऐसे गुजरा कि दिन का पता नहीं चलता कहाँ चला गया। तो अगर हम चाहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी को हम वाकई ऐसा बनाएं जो कारामद हो, जिसमें हमारी आखिरत के लिए कुछ हो, तो मैं आप सबसे कहूँगी कि सिर्फ ये दो तीन हाथ ना उठें कि हम कुरान से जुड़े में, हर हाथ उठना चाहिए। एक मुसलमान कुरान के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजार सकता है? नहीं गुजार सकता। ये वो जिंदगी, ये देखिए कुरान के बगैर आप पता है कैसे हैं, इसकी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मसलन आपको ड्राइविंग नहीं आती और आप गाड़ी लेकर रोड पे निकल जाएं, क्या होगा इसके बाद? दिल सोच के भी दहल जाता है। मसलन आपका कोई बच्चा है, उसको लाइसेंस नहीं है, उसके पास गाड़ी चलानी नहीं आती और उसने आपको पता चला चाबी लेके और वो चला गया, क्या कैसा फील करेंगे? मुतमईन होंगे क्या? नहीं होंगे ना, डर जाएंगे ना। क्यों? आपको पता है उसको तो गाड़ी चलानी नहीं आती, वो कैसे रोड पे चला गया? अब ज़रूर अल्लाह माफ़ करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे ही है ना। ऐसा इंसान अपने लिए भी ख़तरा है, अपनी जान के लिए भी, दूसरों के लिए भी ख़तरा है। बिल्कुल इसी तरह वो इंसान है जो कुरान नहीं जानता, वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला रहा है जबकि उसको गाड़ी ही नहीं चलानी आती, वो ज़िंदगी की रोड पर आ गया है, उसको पता ही नहीं ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्योंकि वो ज़िंदगी कैसे गुजारनी कहाँ से पता चलेगा? आपको मुझे थोड़ी पता है, हमारे मैन्युफैक्चरर ने बताया ना, कि जिसने आपको बनाया, जिसने मुझे बनाया, उसी ने बताया कि ज़िंदगी कैसे गुजारो, और वो है अल्लाह। उसने बताया ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है। अगर हमने उसके मुताबिक नहीं ज़िंदगी गुजारी, मुताबिक क्या गुजारनी हमें तो पता ही नहीं है उसने कहा क्या। अब वो वही लेके फरिश्ता आपके पास, मेरे पास, उसके पास थोड़ी जाएगा। अल्लाह ने एक कुरान उतार दिया, उसने बता दिया कि वे ऑफ लाइफ क्या है, ज़ाबता हयात क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी। जब उसको देख देख के ज़िंदगी गुजारोगे ना, तभी आपकी गाड़ी सीधी चलेगी। और अगर जिसको नहीं पता, तो समझ लो कि इसको ड्राइविंग नहीं आती, ये ज़िंदगी की रोड पे आ गया। अब ख़तरा ही ख़तरा है, आपके लिए भी ख़तरा, अपने घर वालों के लिए भी ख़तरा बनोगे, उनको भी उल्टा पुल्टा ही सिखाओगे, कुछ उल्टा ही समझाओगे, हलाल को हराम कर दोगे, हराम को हलाल कर दोगे, जायज़ को नाजायज़ कर दोगे, यही करोगे फिर। ये हमारा हाल है। हम माएँ बन के भी सही गाइड क्यों नहीं कर सकते अपने बच्चे को? क्योंकि हमें तो खुद ही, हम ज़िंदगी की गाड़ी ले आए हैं, हमें चलानी नहीं आ रही, क्या किसी की रहनुमाई करेंगे? दूसरों की जान को भी ख़तरा और अपने लिए तो ख़तरा बन ही गए हम। तो इसलिए मेरी बहनों, कुरान के बग़ैर कोई ज़िंदगी नहीं है। इसके बग़ैर ज़िंदगी का आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। आप ये सोच लें कि जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब कुरान को समझने लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको समझ आ रही है कि ये क्या कहता है, यकीन करें वो आज कहते हैं, जो 50-60 साल के भी हो गए ना, वो भी कहते हैं कि हमने तो पूरी ज़िंदगी ऐसे लगता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमने कहाँ गंवा दी अपनी ज़िंदगी, हमें तो अब पता चल रहा है। हालांकि वही लोग जब उनको कहा जाता था ना इसी तरह दर्स में, उनको कहते थे आप कुरान सीखें, तो कहते थे हाँ हम तो नमाज़ रोज़ा तो करते ही हैं और क्या सीखें। अब जब कुरान समझने लगे तो अब वो कहते हैं हाय हमें तो अब पता चल रहा है, वाकई हमें तो कुछ भी नहीं पता था, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। तो आप लोग शायद अभी सब लोग ये समझ रहे होंगे कि हमें तो सारा कुछ पहले ही पता है, हमने क्या कुरान हमें कौन सी नई बात बता देगा। ऐसी बात नहीं है। अगर आप वाकई ये चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप कुरान को समझ के देखें, आप खुद इतराफ़ करेंगे कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो आज समझ आ रही, मेरी तो आँखें अब खुली हैं, मैं तो अंधी थी। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि कुरान को जानने वाला और ना जानने वाले की मिसाल कैसी है, जैसे अंधा और देखने वाला। जो इंसान ब्लाइंड होता है तो कैसे होता है, टकरें खाता फिरता है, कभी इधर टकरा रहा है, उधर टकरा रहा है, उधर टकरा रहा है ना। इसी तरह जो कुरान को नहीं जानता वो ज़िंदगी में इस तरह ही टकराता फिरेगा। और जो कुरान की रोशनी में चलता है, ये नूर है ना, कुरान तो नूर है, जो नूर को लेके चलेगा, जिसके पास लाइट है, तो वो ज़िंदगी में हर चीज़ को देख भाल के चलेगा, ठोकर ना खा लूँ, कहीं टकरा ना जाऊँ। तो आप क्या अंधे रहना चाहते हैं? कौन है जो अंधा रहना चाहते हैं? किसी को पसंद है कि वो ब्लाइंड हो? हाँ, कोई भी नहीं चाहता ना। तो जब अल्लाह ताला ने हमें ये नूर दिया है तो इस नूर से फ़ायदा क्यों ना उठाएं? और जो अंधा रह के इस दुनिया से चला गया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको उठाएंगे, जब वो कब्र से उठेगा ना तो अंधा होगा, तो वो कहेगा या अल्लाह मैं तो दुनिया में देखता था, मेरी आँखें थी, मैं अंधा कैसे उठा? तो उसको कहा जाएगा क्यों तुम दुनिया में नहीं अल्लाह के ज़िक्र से अंधे बने रहे, तो आज भी तुम अंधे ही होगे, तुम दुनिया में अंधे रहे थे ना, तो आज भी अंधे ही उठोगे, दुनिया में भी तुमने आंखें लेना पसंद नहीं किया, नूर लेना पसंद नहीं किया, तो तो आज अंधे उठो, तुम मेरे जिक्र से अंधे रहे। तो क्या उस दिन हशर के दिन जब कोई किसी का साथ देने वाला ना होगा, हाँ, जब माँ को बच्चे की, बच्चे को माँ की होश ना होगी, आपस में रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, रिश्ते भी ख़त्म हो गए, खूनी रिश्ते भी एक दूसरे को छोड़ देंगे, कौन पूछेगा? क्या उस मैदान में इंसान की आंखें भी साथ छोड़ जाएं, वो अंधा हो जाए, क्या वो रहना पसंद करेंगे आप? कोई भी नहीं रहना पसंद करता। इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि कुरान से जुड़िए। जुड़ने का मतलब समझते हैं, यानी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ऐसा कोई दिन ना हो जो हमारा कुरान के बग़ैर गुजरे। इसके लिए पहले इसको समझें, सीखें। इसको पढ़ना भी सीखेंगे हम इंशाल्लाह, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो इसके 5 हकूक हैं कुरान के, कि इसके ऊपर ईमान लेकर आओ, इसको पढ़ना सीखो, इसको समझो। जो हम काम कर रहे हैं, हर जुमे को हमारी क्लास होती है, फ़ोन पे होती है, पेल टॉक पे होती है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपको समझाया जाता है कुरान आपसे क्या कह रहा है, अल्लाह आपसे क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है कि आप कैसे चलो, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन से रास्ते पे चलना है, कौन से नहीं जाना, ये अल्लाह आपको बता रहा है कुरान में, ये समझो। वो आप, ये तीसरा हक है कि इसको समझो। फिर चौथा हक है उसके बाद कि इसके ऊपर अमल करो, और पांचवा हक है कि इसको आगे दूसरों तक पहुंचाओ। तो हम तो अभी यहीं तक फंसे हुए हैं कि हम कहते हैं हम ईमान ले आए बस, ना इसको पढ़ना सही से सीखा, समझना तो बाद की बात है, समझने तो बिल्कुल ही तवज्जो नहीं है। अब हम छोटे छोटे बच्चों को भी क्या जोर है कि बस नाजरा पढ़ लो, बस काफ़ी है, सारी ज़िंदगी में बस नाजरा ही पढ़ा हुआ है। आगे भी तो इसके 3 हकूक हैं, समझोगे तो अमल करोगे ना। आपको समझ ही नहीं जिस चीज़ की आई, आप अमल किस चीज़ पर करोगे, क्या चीज़ पर अमल करोगे जब आपको पता ही नहीं है कुरान कहता क्या, और दूसरों तक क्या पहुँचाओगे, आपको तो खुद ही मालूम नहीं है, दूसरों तक किस चीज़ को पहुँचाओगे। तो इसलिए इस कुरान को सीखें। हफ्ते में एक दफ़ा हम आपको कहते हैं 3 घंटे बस आप निकालें इंशाल्लाह ताला, और फ़ोन के ऊपर आप फ़ोन डायल करके रख लें अपने पास बस, और बैठ जाएं कुरान लेके बैठ जाएं। मैं ये नहीं कहूँगी कि काम करते रहें और साथ साथ सुनते रहें, क्योंकि वो 3 घंटे भी क्या अपने अल्लाह को नहीं दे सकते? क्या कोई है यहाँ पर जो 3 घंटे फ़ी सबीलिल्लाह दे, माल देते हो अल्लाह के रास्ते में, माल के अलावा वक्त भी तो देना पड़ता है। कहते हैं जाने हम बचा लें, चलो पैसे दे देते हैं, मेरी जान ना कहीं लगे। सोना पसंद है, टीवी देखने में, फिल्म के आगे हम 3 घंटे गुजार सकते हैं, हम तकते नहीं हैं। क्या कुरान के लिए कोई 3 घंटे भी नहीं दे सकते? क्या हम कहें कि अल्लाह तेरे कलाम के लिए मैंने 3 घंटे वक्फ कर दिए? हमें तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ करनी चाहिए अल्लाह के, ये जितनी हमें नेमतें दी हैं, लेकिन क्या हम 3 घंटे को भी नहीं ये स्पेयर कर सकते कि हमें 3 घंटे अल्लाह तेरे रास्ते में देते, और वो भी हर दिन नहीं, एक दिन हफ्ते में? तो इंशाल्लाह कौन कौन है जो 3 घंटे देगा हफ्ते में, एक दिन? कोई है आप में से हाथ खड़ा करेगा जो 3 घंटे दे सकता है? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला आप लोगों का ये वक्त कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इसमें साबित कदमी अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमेशा हमें अल्लाह की बात सुनने वाला रखे, क्योंकि सबसे ऊपर की ज़ात, सबसे आला ज़ात कौन सी है? अल्लाह की ज़ात। तो सबसे प्यारी बातें कौन सी हैं? जो उसकी बातें। इंसान क्या है, उनकी बातें हम क्यों करें जो हमारे जैसे ही हैं? उनके अंदर भी खामियाँ, हमारे अंदर भी खामियाँ, उसकी बात क्यों ना करें जो हर खामी से पाक है, जो पाक है, सुभान अल्लाह, अल्लाह हर ऐब से पाक है, क्यों ना उसकी बातें सुने और उसी की बातें करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारा यहाँ पे बैठना। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।